श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। अनुवाद। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधाय तात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार जब पूछा गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आपने जो स्थापित किया है, इसका सार में आप क्या बता सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने चार वाक्य में इसका सार बता दिया। वो कहे कि मुख्य रूप से पुस्तक या शास्त्र इस संस्था का आधार है, इस आंदोलन का आधार है। बुक्स आर द बेसिस, यानी हमारे विचार, हमारे आचार, हमारा व्यवहार, हमारा मत, ये सब शास्त्र से अधिकृत, शास्त्र के अनुसार। फिर प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है। यानी जिस हद तक इस ज्ञान को हम अपने जीवन में लागू रखेंगे, उस हद तक हमारे वचनों में वो शक्ति होगी जो दूसरों के हृदय को प्रेरित करेगी हमारे इन वाक्यों को स्वीकार करने, अपने जीवन में अपनाने के लिए। और तीसरा, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, उपयुक्तता ही तत्व है मुख्य उद्देश्य। यानी हर एक चीज भगवान का दिया हुआ जो भी चीज है, भगवान ने सृष्टि में जो कुछ भी निर्माण किया है, उसका एक उद्देश्य है हर एक चीज का। और जिस उद्देश्य से जिस चीज का निर्माण हुआ है, उस उद्देश्य से उस चीज का उपयोग करना चाहिए। जैसा माइक्रोफोन है वायरलेस वाला, हाँ, ये माइक्रोफोन का उद्देश्य क्या है, आवाज को लेकर एम्पलीफाई करके बड़े पैमाने पे लाकर स्पीकर से निकालना बाहर, तो देखने में वो किसी के सर पे मारने के लिए भी बहुत अच्छा दिखता है वो, गुस्से में एक दूसरे को मार भी सकते हैं, पर उसके लिए नहीं बनाया गया वो। उपयुक्तता मतलब जिसने बनाया उसने एक उद्देश्य से बनाया और उसको उस उद्देश्य से उपयोग करना, उपयुक्तता ही सार। इसी तरह से शरीर जो दिया गया उसका एक उपयोग है, उसके लिए उपयोग, उससे अलग नहीं। और अंत में प्रचार ही सार, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो ये चार वाक्यों में कह दिया। तो हम कई, हमें से कई सालों से शायद कुछ लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उतारने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रसंग में भी हम अपने आप को पाते हैं उसको हमें हमेशा सोचना चाहिए कि शास्त्र के आधार है क्या, जो कुछ भी कर रहे हैं शास्त्र के आधार है क्या वो। और हर एक परिस्थिति, हर एक प्रसंग हमारे जीवन में जो आता है उसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, कौन से श्लोक से के अंतर्गत है ये जो मैं कर रहा हूं। तो ये एक एक श्लोक जो है ये एकदम कॉन्सेंट्रेटेड ज्ञान है ये। और इसके, इसको जितना हम हमेशा सोचेंगे इसके बारे में, पचाएंगे इसको, उतना उसका साक्षात्कार होगा एक्चुअली अपने जीवन में। तो इसका मेरा ये पिछले हफ्ते में कुछ अनुभव हुआ, जो कल भी मैं कुछ भक्तों के साथ विचार कर रहा था, बातें कर रहे थे हम लोग, शेयर बातें बतला रहा था। 31 दिसंबर को मैं कलकत्ता के हवाई अड्डे पे, वहां से बंबई आने का तैयारी किया, और जब वहां जब हवाई अड्डे में बैठा हुआ था तो बगल में एक 60 साल के शायद महाराष्ट्रियन कपल, पति पत्नी बैठे हुए थे और हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी हैप्पी न्यू ईयर। मैंने भी कहा हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद उन्होंने कहा, न्यू ईयर का संदेश क्या है हमारे लिए। मैंने कहा आपने पूछा ही है तो मैं बताता हूं। और जैसे मैंने कहा, मैं जो भी कहूंगा गीता के आधार पर कहूंगा, क्योंकि भगवद गीता के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। तो मैंने कहा आपने तीन बड़े गहरे शब्द कह दिया, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा ये तीनों को थोड़ा परख के देखेंगे क्या है ये। और बातचीत होने लगी और मैंने कहा कि पहला शब्द क्या है, हैप्पी। हैप्पी यानी आपका नया साल सुखी हो, शुभारंभ हो, अच्छा चले। तो मैंने कहा ये हैप्पी क्या होता है। तो गीता में 5वें अध्याय में 3 श्लोकों में ये बताया गया है और 6ठे अध्याय के 1 श्लोक में। आपको ये याद रखना चाहिए, है तो नोटबुक में लिख के रखिए, क्योंकि लोग पूछते हैं सुखी, हमें सुखी रहना है, हर एक व्यक्ति सुख की खोज में है कि नहीं। तो 5वें अध्याय का 22, 23 और 24वां श्लोक मैंने कहा आप निकालिए और पढ़िए। मैंने कह रहा भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले गीता में कह चुके हैं। तो बोले सुख क्या है, 2 प्रकार के सुख इस संसार में, एक भौतिक सुख और एक आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख क्या है और उसका परिणाम क्या होता है, आध्यात्मिक सुख क्या होता है और उसका परिणाम क्या होता है, और उन दोनों श्लोक के बीच में उस सुख को कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह भी बताया गया। तो पहले भौतिक सुख के बारे में कहते हुए पांचवें अध्याय के 22वें श्लोक में एक सुंदर श्लोक है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्श जा भोगा, इंद्रिय भोग विषय भोग यानी संस्पर्श जा, संस्पर्श जा मतलब इंद्रियां, कान नाक आंख त्वचा और जिह्वा, शब्द कानों से अच्छे शब्द, स्पर्श त्वचा से स्पर्श, आंखों से रूप, जिह्वा से रस और नाक से गंध। तो इंद्रियों को जब विषय भोग के संपर्क में आते हैं तो एक अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा, पर यह सुख कैसा है, दुख योनय एवते, ये जो हम सुख का अनुभव कर रहे हैं ये एक्चुअली दुख का बीज बो रहे हैं, दुख योनय एवते। आप बोलेंगे कैसा, के इंद्रियां विषय के भोग में, विषय के वस्तु के संपर्क में आ रही है तो दुख योनय कैसा, क्योंकि जो मन है वो लगातार उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। हम जो भी चाहते हैं हमको लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहे, है कि नहीं, हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहे। परियों का कहानी होता है ना, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, हमेशा के लिए वो सुखी रहे, हमेशा कितने साल। केवल परियों की जो कहानी है वहां होता है ऐसा, पर असली जीवन में हम देखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो वस्तु आज हमें सुख का अनुभव करा रहा है वही वस्तु थोड़े समय के बाद वही दुख का अनुभव कराता है। बड़ा अद्भुत संसार है ये। उदाहरण के लिए एक मिठाई, एक मिठाई खाएगा अच्छा, दो खाएगा ठीक है, उसके बाद उल्टी आने लगता है, वही चीज जोड़ा ज्यादा, मतलब वही चीज वस्तु यही है जो पहली बार सुख दिया बाद में सुख नहीं देता, बाद में कहते हैं नहीं चाहिए नको। तो वस्तु वही है पर एक समय पर उसका एक अंत हो जाता है। सो दुख योन एवते और आदि अंतवंत कहते, इसका एक शुरुआत है और एक अंत हो जाता है, और इसीलिए न तेषु रमते बुध, बुध मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। तो भगवान कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुखों में रमण नहीं करता, पर माया की शक्ति ऐसी है, लोगों का प्रचार ऐसा है कि ये नहीं करते तो कैसा हैप्पी न्यू ईयर है तुम्हारा, पीना चाहिए। काफी महंगा दारू होता है उसको पीते हैं, एक्चुअली जलता है, दुख ही हो नहीं ये बात, और उसमें हमको लगता है और कुछ समय के लिए एक प्रकार का अच्छा उनको लगता है कि ये अच्छा अनुभव, जितना ऊपर उठाता है उतना नीचे बाद में डालता है, उसका क्या। तो आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों में रमण नहीं करता। फिर आध्यात्मिक सुख क्या है वो 24वें श्लोक में बताया गया, यो अंतः सुख, जो सुख अंदर से है, अंतः सुख अंतर आराम, मतलब अंदर की ओर, अंतर ज्योति रेव यह, अंदर जा रहे हैं हम लोग, अंदर अंदर जाना, बाहर नहीं, अंदर सुख का कारण जो है अंतरंग में जा रहे हैं हम लोग, हमारे अंतरंग में। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति, यानी जिस हद तक हमारे सुख के लिए हम हमसे बाहर चीजों पर निर्भर हैं, वो हमेशा चिंता का कारण बन जाता है। अगर हमारा सुख कुछ चीजों पे निर्भर है तो हमेशा हम चिंतित रहते, वो चीज अगर नहीं है, अब वो चीज अगर हम खो बैठे तो, उदाहरण के लिए हमारा सुख हमारे गाड़ी के ऊपर है, हमारा घर, हमारा ये सारा चीज, कुछ बहुत सारे वस्तुएं, सोना चांदी सब इकट्ठा करके रखें, उस पर हमारा सुख निर्भर है, और वो अगर चला गया हमारे जीवन से, या हमको खींच के कहीं और ले गया, उसे निकाल दिया गया, तो हम दुखी हो जाएंगे। अगर हमारा सुख किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, किसी संबंध के ऊपर निर्भर है, वो संबंध अगर टूट जाता है तो ऐसा लगता है मानो एक पेड़ को दो टुकड़े कर दिए। और कभी कभी पूरे जीवन भर लोग उसको वापस फिर से अपने मूल स्थिति में आ नहीं पाते हैं, पूरे जीवन भर इसी प्रकार के शोक करते ही शरीर छोड़ते हैं। मैं जहां बैठा हुआ था वो सामने अखबार पे खबर भी आया था कि ब्रिटिश यूके के सबसे प्रसिद्ध कॉमेडियन टीवी में, जिनका धन जो है 21 मिलियन पाउंड, एक पाउंड मतलब 80 रुपया, मिलियन मतलब 10 लाख, 21 इंटू 10 लाख इंटू 80 इतना हो गया, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट कर लो, इतना उनका धन है। उनका विवाह एक स्त्री से हुआ जो उनसे भी ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर गाती है वो, और वो जब गाती है तो बड़े बड़े हॉल में नहीं, स्टेडियम बुकिंग करते वो लोग, 60-70 हजार लोगों के स्टेडियम में वो गाती हो, और वो भी बहुत प्रसिद्ध है। उसका तो 42 मिलियन पाउंड, एग्जैक्टली दुगुना उसका संपत्ति पूरा जो है। विवाह हुआ था कुछ समय पहले, और अभी पूरे पाश्चात्य देश में न्यूज फैला हुआ है, अमेरिकन CNN जहां भी, रसल ब्रांड इज अबाउट टू सेपरेट फ्रॉम हिज वाइफ। तो बोला देखो इतना पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, मान की कमी नहीं है, सम्मान है, देखने में बहुत सुंदर है, धन है, सुंदरता है, और जन, धनम जनम सुंदरीम, तीनों है, कोई कमी नहीं है। पागल लोग यहां भी जाते हैं, हजारों लोग पीछे पड़ते हैं उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। वो व्यक्ति हमारे सन्यासी से एक मिले थे कुछ महीनों पहले, और वो बोल रहे थे कि सब कुछ है मेरे पास पर मैं सुखी नहीं। कुछ महीनों पहले ये घटना होने से पहले, तो यो अंत सुख, अंत जिस हद तक हम हमसे बाहर चीजों के ऊपर निर्भर हैं, जो इस संसार में बदलता रहता है, वस्तु बदल जाएंगी, संबंध बदल जाएंगे, व्यक्ति बदल जाएंगे, अगर टिके भी रहेंगे तो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, वो भी चले जाएंगे या हम चले जाएंगे, उस पर अगर हमारा सुख निर्भर है तो निश्चित रूप से वो दुख आद्यंतवंत, वो अंत होने वाला है। पर गीता कहता है वो सच्चा सुख जो है अपने अंदर ढूंढने का मतलब क्या, अरे अपने आप को पहचानो, तुम ये भौतिक शरीर नहीं हो जो बूढ़ा होने वाला है, मृत्यु होने वाली है, तुम आत्मा हो, सच्चिद आनंद, आनंदमयोभ्यासात। एक्चुअली आत्मा का स्वरूप है आनंदमय, स्वाभाविक रूप से आनंदमय है वो। इसीलिए हर एक व्यक्ति आनंद की खोज में है, सुख की खोज में है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म सिद्ध अधिकार, जैसा हमारे किरण ने कहा, लोकमान्य तिलक, हाँ, स्वतंत्रता हमचा जन्म सिद्ध अधिकार। इसी तरह से भगवत गीता के अनुसार सुख आणि आनंद आमचा जन्म सिद्ध अधिकार है, पर वो सुख अगर बाहर ढूंढोगे तो निश्चित रूप से नतेषु रमते बुधः, दुख यो न एवते, वो दुख का कारण बन जाएगा। पर अपने अंदर ढूंढोगे अंत सुख, अंतर आराम तथा अंतर ज्योतिरेव, तब कोई परिस्थिति, बाहर की कोई परिस्थिति उस सुख से हमें अलग नहीं कर पाएगा। ये छठे अध्याय के 23वें श्लोक में, पढ़िए 24वें श्लोक में, आपको याद रखना चाहिए ये श्लोक है। क्यों? क्योंकि कभी कभी पुस्तक वितरण करते हैं, पढ़ो आप सुखी हो जाओगे। अच्छा, क्या कहां लिखा है? मैंने पढ़ाओ, तुम पढ़ो, इसलिए तो बेच रहा हूं। ऐसा नहीं, कैसा सुख होने का है? निकालो गीता पकड़ो, हाँ निकालो, छठा अध्याय निकालो, पढ़ो 24 वर्ष लो, क्या संगत थे संगा वाचा। कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्र यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यतेनाधिकम ततः यस्मिन् स्थितोन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगितम। क्या बोले महाराज, को समझ में नहीं आया? सब सर के ऊपर से गया, बड़े संस्कृत बोल रहे हो बस। कितना सुंदर से गीता में कहा गया, मूर्खतावश हम पढ़ते नहीं है, यही हमारा समस्या है। ऐसी सुख की परिभाषा और कोई भी शास्त्रों में नहीं मिलेगी आपको। साक्षात या मुखात पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्चित, साक्षात भगवान कह रहे हैं, सुख की परिभाषा दे रहे हैं। पहला, सबसे पहले कहते हैं सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिकम मतलब इससे परे सुख नहीं है। सबसे श्रेष्ठ सुख कौन सा है? पहले कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तद, कौन सा? पहला कहते हैं, पहला लक्षण क्या है? बुद्धि ग्राह्यम, केवल जो बुद्धि, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वही इसको स्वीकार करेगा। कृष्ण जे भजे से बड़ चतुर, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस सुख को पकड़ेगा। दूसरे लोग दूसरे सुख के पीछे जाएंगे, जो परछाई जैसे जितना भागोगे वो भागता रहता है, मिलता नहीं है कभी। रेगिस्तान में प्यासा व्यक्ति अगर पानी की खोज में हो, ऐसी है सुख, एक बूंद पानी जस प्यास बढ़ाता है, बुझाता नहीं है। तो बुद्धि ग्राह्यम, पेड़ खड़ा है हजारों साल तक खड़ा रहता है धूप में, हाँ इसमें थोड़ी सुखी है। आपको खड़े कर दिया जाए बिना कपड़े के, 50 साल खड़े रहो बस, धूप आएगा, बारिश आएगा, ठंडी आएगा, खड़े रहो, क्या सुख है उसमें? तो पेड़ का सुख नहीं। कुत्ते बिल्ली सुखी है क्या? उनकी परिस्थिति देखो, भगवान ने ऐसा चेतना ढक के रखा है कि उसमें भी सुख मिलता है उनको। पर बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सुख नहीं चाहता, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सुख चाहता है जो बढ़ता रहे, कभी घटे नहीं, कभी समाप्त ना हो और कभी दुख में परिवर्तन ना हो। पर ऐसा सुख कहां है महाराज, मिलता किधर है? यस, मिल सकता है अगर तुम ढूंढोगे तो, उसकी ढूंढो। तो सुखम आत्यंतिकम यथत बुद्धि ग्राह्यम, और दूसरा अतीन्द्रियम, इंद्रियों के सुख के द्वारा अगर ये ऐसा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो भूल जाओ। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे, मन से परे, क्योंकि मानसिक सुख जो है, आज जो सुख है वही स्थिति कल दुख देता है। आज जो परिस्थिति है, आज जिस व्यक्ति हमको सुख दे रहा है, कल ही वही व्यक्ति दुख देगा हमको, अगर मन उसको स्वीकार नहीं करेगा तो। मन कन्विंस कर देगा कि ये अच्छी व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा है, और कुछ उन्हें उल्टा सीधा बोल दिया तो वही व्यक्ति को सहन नहीं कर पाएंगे, सामने आ गया तो सारे दुख यो नहीं ये वती शुरू हो जाता है, ये आया क्यों। कुछ समय पहले बोलते हैं, इस व्यक्ति के बिना मैं रह नहीं सकता, और वही व्यक्ति के साथ कुछ साल बोलते हैं, ये व्यक्ति अगर रहेगा तो मैं रह नहीं सकता। ऐसा कैसा, व्यक्ति वही है, वो बदला नहीं है, हम बदले नहीं है, तो बदला क्या है, मन बदल गया है। पहले मन को अच्छा लगता था, आज मन को अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को कुछ खिलौना दो, अच्छा से खेलेंगे खेलेंगे दो दिन के लिए, बस दो घंटे के लिए, उसके बाद फेंक देंगे, ये अच्छा है नहीं, ये आता ना कोई, ते पाई जो दुकान के अंदर है वही चाहिए मेरे को, जो एक बार हाथ में आ गया दो मिनट के बाद फेंक देना, अभी वो चाहिए। तो सुख मन में नहीं है, मन जिसे आसक्त होता अभी सुखी है, सुखी सुखी सुख का कारण, और वो मिल गया ये नहीं, अभी वो चाहिए। तो इंद्रिय सुख सुख का कारण नहीं देता, मानसिक सुख सुख का कारण नहीं देता, अहंकार को सुख क्या लगता है, जब मेरा गुणगान हो, और वही व्यक्ति अगर सत्य बोल दे और बोले मैं बताऊं तू कौन है, तेरा क्या क्या लक्षण है सब बताऊं, पूरा लिस्ट बना के बोलूं, तो वो दुश्मन हो जाता है हमारा। तो अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे, यानी आध्यात्मिक सुख, जो आत्मा को भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है, प्रेममय संबंध, सेवा का संबंध, भक्ति का संबंध, भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति में जो रस है वो रस अमृत है, वो मरता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता है, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायोन विद्यते, इसका नाश नहीं होता, घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उस सुख को ढूंढो, क्योंकि वो तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है, वो जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ सच्चिदानंद, तो तुम मृत्यु का डर नहीं, और ज्ञानमय हो जाओगे और आनंदमय हो जाओगे। तो बुद्धिग्राह्यम, केवल बुद्धिमान व्यक्ति इसको ऐसे सुख को लेगा। अतीन्द्रियम, जो ऐसा इंद्रियों का सुख नहीं, मानसिक सुख नहीं, अहंकार को पाने वाला सुख नहीं, आत्मा का सुख, यानी भगवान की शुद्ध भक्ति। हाँ, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, और वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः, जो इस तत्व में स्थित हो गया है वो कभी इधर उधर भटकेगा नहीं। एक व्यक्ति आज यहां सुख है, पर कल इस स्थिति को छोड़कर दूसरी जगह जाता है, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं वहां सुख है, फिर अमेरिका छोड़ के बोलता है चांद में जाना चाहता हूं वहां सुख है, चांद के बाद सोचेगा नहीं चांद में तो बहुत ठंडी है, सूरज में जाऊंगा थोड़ा गर्मी है, क्या पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, कोल्हापुर में नहीं है मैं बंबई में जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा बंबई में नहीं है मैं अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका में नहीं है स्विट्जरलैंड जाऊंगा, वहां भी नहीं है वापस गांव में जाऊंगा, वहां भी ज्यादा पॉलिटिक्स हो गया, अभी मैं कहीं और जाऊंगा, बदलते बदलते रहते। स्थितस्थल तत्वतः, पर जो तत्वतः अपने आप की मूल स्थिति को समझ गया, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शिनः, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इधर हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे भगवत धाम में हो, कहीं भी हो, वो व्यक्ति विचलित नहीं होता, जिस स्थिति में भी है उस स्थिति में सुखी है वो। क्यों? क्योंकि बाहर सुख की खोज में नहीं कर रहा है वो, अंत सुख अंतर आराम तथा अंतर ज्योतिरेव, उसको कहीं भी डाल दो सुखी है वो वहां। कौन नहीं चाहता ऐसा सुख जो आपसे छीना नहीं जा सकता, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता ऐसा सुख, और आपको कोई भी परिस्थिति में डाल दे आपको उसमें से विचलित नहीं कर सकता, आपके सुख में से आपको विचलित नहीं कर सकता, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सुख चाहता है और जो हमेशा बढ़ता रहता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, तीसरा हो गया, एक तो बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम स्थितस्थल चत्वतः, फिर भगवान कहते हैं चौथा लक्षण, यम लब्ध्वा, जिस व्यक्ति को ऐसा सुख मिल गया है, च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, कोई भी देवतागण साक्षात भगवान भी आके पूछे वत्स, तू जो सुख अनुभव कर रहा है ना, उसके बदले वो छोड़ दे, तू फेंक दे कचरे में, मैं तुझे इंद्र की पदवी दूंगा, अप्सराएं दूंगा, ब्रह्मा जी की पदवी दूंगा। वो बोले ये सब मेरे को समझ में नहीं आता, चल करोड़ रुपया दूंगा, एमपी बनाऊंगा, नहीं 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 पीएम बनाऊंगा, तुझे जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोलावेच श्रीधर को, जो गरीब फटे कपड़े पहनकर दिव्य आनंद का अनुभव करता था हरिनाम लेने में, उसको कहा कि मैं तेरे को गोलोक वृंदावन आज भेज रहा हूं, जाना चाहता है क्या? बोले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए तुझे फिर? बोले आप आते रहो, मुझे सताते रहो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निमाई आप आते रहो और मुझे सताते रहो, मेरे सारे केले के पत्ते केले सब छीन छीन के ले जाओ, आपका आपका आना आपका दर्शन आपके साथ जो आदान प्रदान है यही चाहिए। जन्मनी जन्मनी ईश्वर जन्मनी जन्म, हर एक जन्म में आप इसी तरह से मुझे आके सताते रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में एक पूरा अध्याय भागवत और सारे पुराणों से श्लोक है जहां भक्त के सामने भगवान कह रहे हैं बेटा मांग कुछ, क्या चाहिए तुझे, तुझे इस भौतिक सुख का कोई चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तुझे आठ प्रकार की सिद्धि चाहिए, तुझे मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्मरण चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, जहां भी रहूं, जहां भी रहूं, मैं नरक में डालो चलेगा, पर आपकी सेवा से मुझे दूर मत करना, क्योंकि उसमें जो सुख है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो बुद्धि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम, उससे अधिक कोई भी कुछ अगर उनको बोले तो कहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे, नहीं इससे बढ़कर, इसीलिए तो अत्यधिक सुख है ये, इसके तुलना में हर एक दूसरा सुख एकदम तुच्छ है। यन मिथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छम, बहुत ही तुच्छ है ये। कंडू यलेन करयोरिव दुख दुखम, अरे दुख को पैकेजिंग करके ऊपर से सुख बोल रहे हो, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं असली सुख का अनुभव कर रहा हूं। तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न आ यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, और अगर उस सुख में स्थित हो गया फिर दुखमय स्थिति क्यों ना आ जाए, सबसे दुखमय स्थिति क्यों ना आ जाए, उस व्यक्ति को विचाल्यते विचलित नहीं कर सकता, पूरी दुनिया कहेगी अरे ये दुखी है, इतना दुखी है बेचारा। पर वो कहता है कि नहीं कुछ भी स्थिति होने दो, मैं वैसे रहना चाहता हूं, इससे हटना नहीं चाहता हूं। श्रीवास ठाकुर के घर में उसका बेटा गुजर गया महाप्रभु के कीर्तन में, दुख बड़ी दुख की बात है, सारे स्त्रियां रो रही थी, श्रीवास ठाकुर ने जाके बोला आवाज नहीं आना चाहिए, तुम लोग रोना है तो रो अंदर ही अंदर बस, अगर आवाज आया और महाप्रभु के कीर्तन में बाधा आया तो मैं भी गले में बांध के गंगा जी में छलांग मार दूं। महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए, बोले क्या क्या कैसे लोग हैं ये लोग, इतना सब परिस्थिति में भी इसको कोई दुख नहीं, सिर्फ मुझे सुख देने का प्रयास। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते तम विद्याद दुख संयोगम वियोगम, उस व्यक्ति के लिए कहीं भी कोई भी परिस्थिति दुखमय नहीं है, उस दुख से परे चला गया है और वो आत्यंतिक सुख का अनुभव कर रहा है, उसको कोई परिस्थिति में दुख नहीं है, भौतिक दुख उसका एक ही दुख है। क्या दुख है? कि मैं समय बर्बाद किया, एक क्षण भी अगर भगवान के विस्मरण में चले जाए सबसे बड़ा दुख, बस अरे एक क्षण में विस्मरण हो गया भगवान का। यह बहुत ऊंची बात है, उस स्तर पर तो हम नहीं है, पर फिर भी कम से कम उसका प्रयास करना चाहिए। तो ये हो गया हैप्पी। उसके बाद मैंने कहा न्यू। न्यू मतलब क्या है? मंजे क्या है? नया। तो मैंने उनसे पूछा क्या नया कर रहे हो इस बार? पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, वही चीज जो चूसे चूसे हुए चीज को फिर से चूसने का प्रयास कर। इस भौतिक संसार में कोई भी चीज, कोई भी नया चीज कितने समय तक नया रहता है? वो कुछ समय के लिए, थोड़े समय के बाद उसका नयापन चला जाता है और आदमी बोर हो जाता है। वही चीज बार बार क्या याद है, क्या बार बार सुनना, क्या बार बार वही चीज सूंघना, कुछ नया चाहिए। क्यों हर एक व्यक्ति को नया नया चाहिए? क्योंकि वही चीज पुराना चीज कर करके थक गया आदमी, चार बार करने के बाद थक जाता है। पर आध्यात्मिक चीज जो शाश्वत है, भगवान से जुड़ी हुई चीज, हमेशा नव नवायमानम, हमेशा नया लगता है। उदाहरण के लिए हरि नाम लो, कभी कभी लोग बोलते हैं तो कौन सा नाम जप रहा है? हरे कृष्ण। अरे 18 साल पहले भी तो वही बोला था, वही मंत्र जप रहा है, कोई नया मंत्र नहीं है क्या? बोले नया मंत्र बोलोगे रे भाई, तो करोड़ों जन्मों से जप रहे। अच्छा वही जपता रहता है, तेरे को बोर नहीं होता? कुछ नया नया हर रोज एक एक नया मंत्र। बोले नहीं, ये हर रोज नया लगता है, ये लोग विश्वास नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते। तो वही चीज सुबह बीच वही, शाम को भी वही, रात को भी वही मंत्र, कोई मर गया तो भी वही मंत्र, कोई जन्म लिया तो भी वही मंत्र, शादी हुआ तो भी वही मंत्र, एक ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या है तुम? तो कोई दूसरा है ही नहीं क्या? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, कोई एक चीज बार बार करता है और तंग नहीं आता है, पागल हो गया बेचारा, समझ नहीं पाते। और रूप गोस्वामी कहते हैं काश मेरे 1000 कान होते और 1,00,000 जिह्वा होते, ताकि कृष्ण ये 2 शब्द में इतना रस है कि एक जिह्वा और 2 कान कम पड़ता है, इतना अमृत है इसमें, नामामृत। हमारा अनुभव नहीं है, 16 माला भी हमारे लिए थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम साधक हैं, इसको अनुभव किए नहीं अभी तक। भगवान का स्वरूप कितने लोग बार बार हर रोज आके दर्शन करते, वही कभी कभी कोई बड़े बड़े करोड़पतियों के घर में सुंदर सुंदर मूर्ति लाते। एक व्यक्ति के यहां बड़ा 50 रूम है उनका, बड़ा उनका बाथरूम इतना बड़ा होगा, ऐसे 50 रूम है, 2 ही बुड्ढे बुड्ढी दोनों रहते हैं, बस भूत जैसे घूमते रहते 50 रूम के अंदर। एक एक कोने में एक एक संगमरमर की मूर्ति है, मार्बल की। एक ऐसा स्त्री ऐसा खड़ी हुई, दूसरा एक ऐसा मोटा आदमी पेट वाला ऐसा खड़ा हुआ है, अलग अलग अलग। ये कितना? 17,00,000 की मूर्ति, ये 12,00,000। अरे बहुत अच्छा से कार्विंग किया हुआ। जो नया जाता है 10 मिनट के लिए अच्छा लगता है, बाद में उसको देखता भी नहीं उस पत्थर की मूर्ति को, अपना कोट निकाल के टांग देता वो, ऐसा ऐसे खड़ी है ना वो, तो उसके हाथ में टांग देता बस, और उसका टोपी उसके सर पे लगा देते, चला जाते ऑफिस जाते वक्त पहन के जाना बस। मतलब वो उसका ये चला गया, नयापन चला गया। पर वही जब वही मार्बल से बना हुआ, वही पीतल से बना हुआ, वही चीजों से बना हुआ, जब भगवान की सुंदर मूर्ति को हम भगवान को आमंत्रित करते हैं भक्तों के संग में आकर और उनकी प्रेममयी सेवा करते हैं, हर बार जब सामने आते हैं उनके सामने तो नया लगता है, कुछ अलग लगता है, प्रेम बढ़ता है, आदान प्रदान होता है, आनंद आता है। क्या रहस्य है इसका? हालांकि वही भौतिक चीज है, पर क्योंकि अभी आध्यात्मिक, जैसे ये महामंत्र भी जो है ये भौतिक अक्षरों से बना हुआ है, ह र क्र म, यही तो चार पांच श्लोक अक्षर है, पर क्योंकि भगवान से संबंधित है ये नाम, ये आध्यात्मिक हो गया, दिव्य आनंद का अनुभव कराता है। पागल हैं लोग, हर रोज आप जयपुर में जाएंगे दिन में 3 बार कहीं भी हो, दुकान कितना भी बिजी हो, बंद करके लोग राधा गोविंद जी का दर्शन करने जाते हैं और घंटों घंटों सामने खड़े रहते हैं, भज मन राधे कृष्णा प्यारे कृष्णा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भज मन, ऐसे करते रहते वो घंटे घंटे, और इतने 500-600 लोग नाचते रहते हैं ऐसे घंटे घंटे हर रोज, इतना आनंद, कौन सी पत्थर की मूर्ति के सामने। हम भी देखते हैं बहुत सारे पुतले बना के रखते हैं सड़क के बीच में, कौन देखता है उसको बाद में। तो भगवान का स्वरूप या भगवान की लीलाएं, गीता 5000 साल से ये हमें यही हर हर साल यही गीता बांटते हुआ, हाँ यही गीता जैसे आए तशी, अच्छा एक ही पुस्तक, हाँ पब्लिक लेती है ना, कैसा समझता नहीं है लोगों को, ये एक ही बुक कितना बार पढ़ते हो तुम लोग, क्या पढ़ते हो हम लोग, गीता पढ़ रहे, अच्छा तो हर हफ्ते नया नया बुक नहीं, हर रोज भगवत गीता, कितने साल से, पिछले इतने साल से चल रहा है हमारा, हर रोज गीता क्लास, उसके बाद भागवतम। प्रभुपाद जी जब 1966 में शुरू किए तो उनके शिष्यों ने पूछा, अच्छा अभी आप गीता कर रहे हैं, फिर टिबेटन बुक ऑफ द डेड करने वाले, उसके बाद कुछ ये करने वाले, वो कर, बोले नहीं हर रोज गीता, अच्छा बस, बोले हाँ सब कुछ इसके अंदर है, वही रामायण, रामायण भी हिंदी पिक्चर जैसा ही है, पहले हीरो हीरोइन साथ में, बाद में विलन उठा के ले गया, बाद में उसको मार के हीरो वापस लाता, इतना ही है रामायण भी वही कथा है, बीच में कोई कॉमेडियन आता है हीरो के साथ देने के लिए। पर ऐसे कितने सारे पिक्चर आए वो चले भी गए, पर रामायण जो है, हालांकि कहानी वैसे ही हो, हर रोज नया नया लगता है वो, हर क्षण हर हर पढ़े हर बार पढ़ोगे उसमें नया चीज आता है, गहराई में जा सकते हो। और क्यों? क्योंकि भगवान का वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। नैमिषारण्य के ऋषिगण कहते हैं, हे सुत गोस्वामी जी भागवत कथा सुनाइए, हम तृप्त नहीं हुए इतने बार सुनने के बाद भी, उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान के संबंधित उनके नाम गुण रूप लीला सुनाते रहिए। यत् श्रृण्वताम, जिसके सुनने से रसज्ञानम, इसका जो रस है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद में बढ़ता जाता है। भले हमारा उतना उच्च कोटि का अनुभव न हो, पर कम से कम कुछ साल से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र तो जप कर रहे हैं, 16-16 माला हर रोज, फिर भी थकावट नहीं होता, अच्छा कर लगता है हमको। फिर मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर, ईयर मंजे का है साल, साल मंजे समय काल, वो हैप्पी क्या है भाई, हर जनवरी मतलब एक कैलेंडर का पन्ना फाड़ा मतलब मृत्यु की ओर एक अग्रसर हो गए, एक साल मतलब मृत्यु पास आ रहा है, तो हैप्पी क्या है इसमें, मृत्यु पास आ रही है, बुढ़ापा आने वाला है,
क्या हैप्पी है इसमें?
मैं साधारण तो उदाहरण देता हूं, अगर समझ लीजिए आप 5-स्टार होटल में पार्टी करने गए और वहां सब प्रकार के खान रखे हुए हैं, पीने के लिए सब प्रकार के जो भी आपको अच्छा लगता रखा हुआ है, और अनाउंसमेंट होता है अभी डांस होने वाला है, उसके बाद अभी आप जो भी पी सकते हैं जो भी खा सकते हैं, दरवाजा खिड़कियां बंद है, पर भाइयों मैं एक चीज बता दूं, 10 मिनट में एक बहुत बड़ा बॉम्ब स्फोट होने वाला है ऐसा खबर मिला है, और दरवाजा खिड़की खोल नहीं सकते, हैप्पी न्यू ईयर, पार्टी करो। आप सोचिए, बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा वो सब खाना पीना बाद में, यार खिड़की खोलो कहीं तो, छलांग मारना है मेरे को। कौन सा व्यक्ति इस चीज के बारे में सोचेगा नहीं? पशु, आप कत्ल खाने के सामने जाइए, लाइन में बकरी खड़े हुए हैं, एक बकरी के बाद दूसरे बकरी को काटा जा रहा है, पर दूसरी बकरी जो है घास खा रही है, हैप्पी न्यू ईयर। क्यों उसको समझता नहीं है, उसको समझता नहीं है कि मेरा नंबर आने वाला है, अभी बेचारा घास खाओ बस। तो बुद्धिमान व्यक्ति जिसको मालूम है कि हर घड़ी मृत्यु पास आ रही है, सोचता है, बोला ये मुझे नहीं चाहिए, मैं कैसे आराम से बैठ सकता हूं जब मुझे मालूम है जो नहीं चाहिए उस पर आने वाला है। तो तैयारी करो, भागो, निकलो यहां से, यहां से निकलने का प्रयास करो इस भौतिक संसार से। दुखालयम अशाश्वतम। इसीलिए केवल बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुख की खोज में जाता है जो शाश्वत है, जो इंद्रियों से परे है, जो कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं करता, जिससे बढ़कर और कुछ चीज नहीं है, और जिसमें स्थित होने के बाद भौतिक तथाकथित दुख में भी गुजरते हुए उसका सुख में कोई विचलित नहीं होता, वो फर्क नहीं पड़ता है, अंतर नहीं होता है। कैसे? क्या भक्त के लिए समय नहीं आता? भक्त के लिए मृत्यु नहीं आती? भक्त के लिए बुढ़ापा नहीं आता? आएगा, केवल शरीर के लिए आएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु दोनों ने एक ही नरसिंह देव को देखा, एक डर के मारे कांपने लगा और गुस्से से मारने का प्रयास किया, दूर ठेलने का प्रयास किया, और दूसरा हार लेके खड़ा था। वाह, स्वागत हो महाराज। तो भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम। हिरण्यकशिपु, भोग और ऐश्वर्य, इसमें जो आसक्त है वो मृत्यु को जब देखता है उसको भूलना चाहता है, उसको नष्ट करना चाहता है, उसको हटाना चाहता है। टेक्नोलॉजी, भौतिक प्रगति से बुढ़ापा आया तो नहीं, मैं थोड़ा बाल को सफेद को काला कर लूंगा, मैं दूर भगाना प्रयास करूंगा, नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं बिल्ली चूहे को भी उसी मुंह से पकड़ती है, अपने बिल्ली के बच्चे को भी उसी मुंह से पकड़ती है। इसी तरह से मृत्यु दोनों को आने वाली है। एक अभक्त के लिए कृष्ण मृत्यु के रूप में आते हैं, मृत्यु सर्व हरस चाह, जिस चीज के लिए हमने पूरा जिंदगी भर खोला है वो सब चीज हरण कर लेते हैं मृत्यु के रूप में। इसीलिए अभक्त मृत्यु से डरते हैं, कृष्ण से डरते हैं, नहीं चाहता उनको, क्योंकि उनको याद दिलाता है ये सब कुछ छीन लिया जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा तुम्हारा। और बिल्ली के बच्चे के लिए बिल्ली का मुंह सबसे सुरक्षित स्थान है। क्यों? क्योंकि मृत्यु का मतलब है उसके लिए शाश्वत जीवन का दरवाजा खोल रहा है। मृत्यु का मतलब है ये भौतिक शरीर से मुक्त और भी भगवान के साथ शाश्वत जीवन वैकुंठ लोक में। तो यद गत्वा अनिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवत धाम के लिए दरवाजा खुल रहा है, तो बड़े आनंदित से मृत्यु की ओर बढ़ता है। तो मैं वो इनको समझा रहा था, ये हमारा हैप्पी न्यू ईयर, गंभीर हो गए वो, थोड़ा मुस्कुराना बंद हो गया, सोचने लगे। सोचने के बाद उन्होंने कहा, आपने नए साल का बड़ा गंभीर संदेश दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह हमें भी मालूम है, निश्चित रूप से हम सब ने शायद जितने साल से आप हरे कृष्ण महा आंदोलन में है उतने बार शायद ये सुने होंगे हर नए साल को। सवाल उठता है, हमें मालूम है हैप्पी क्या है, कौन सा चीज न्यू करना चाहिए, और हर इस साल को सही में भगवान की ओर बढ़ना, मृत्यु की ओर बढ़ना नहीं, भगवान की ओर, मृत्यु संसार वर्तमानी नहीं, अपवर्ग वर्तमानी, भगवान की ओर जाना, ये तो हमें मालूम है। पर सवाल उठता है कि हम ये सब जानते हुए भी कुछ कर नहीं क्यों पाते, सालों साल उसी तरह से बैठे हुए हैं हम लोग, क्यों गंभीर नहीं हो रहे। मैं भी यही सोच रहा था, उसको तो बड़ा प्रवचन देके प्लेन में बैठ गया, बैठ के सोचने लगा मैं कौन सा बड़ा बड़ा प्रवचन तो देता हूं, कर क्या रहा हूं मैं। फिर मैंने सोचने लगा, तो कौन अपने जीवन में सही में नए साल को एक सुखमय आनंदमय नया साल किसके लिए है ये, और कौन इसका अनुभव कर सकता है, जिसमें दृढ़ता हो, दृढ़व्रता। हमें मालूम है ये, प्रायशः इस हॉल में आज जो भी बैठे हैं, आज अभी तक जो मैंने बोला है ये आपने हजारों बार सुने भी होंगे, पर फिर भी कभी कभी हमारा मन में आता है, हमें मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, पर दृढ़ता नहीं है। चार दिन के लिए शुरू करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, चार दिन के लिए, 10-15 दिन के बाद किसी दोस्तों ने बुलाया, आज एक भी लेयर बाद में करना ना तू अपना, ठीक है चलो, खत्म हो गया उस दिन। तो ये दृढ़ता मतलब क्या, दृढ़ता मतलब इंद्रियों और मन का संयम। इंद्रियां और मन खींच के ले जाती है हमें, इसीलिए ये पांचवें अध्याय में दो श्लोक है ना, भौतिक सुख 22वां श्लोक और आध्यात्मिक सुख 24वां श्लोक, बट उसके दोनों के बीच में 23वां श्लोक है, और 23वां श्लोक हमें बताता है अगर 24वें श्लोक का आनंद प्राप्त करना है, सुख का, आध्यात्मिक सुख का, तो क्या करना है। वो 23वें श्लोक में है, शक्नोति हैव यस्सोढुम प्राक शरीर अविमोक्षणान काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त ससुखी नरह। कहते हैं शक्नोति, शक्नोति मतलब जो कर सकता है, क्या कर सकता है, शक्नोति इह एव, इह एव मतलब इस संसार में, मृत्यु से पहले, मृत्यु के बाद में, अगले जन्म में करूंगा नहीं, आज से। शक्नोति हैव इह एव यः सोढुम, सोढ़ुम का मतलब तितिक्षस्व भारत, सहन करो, सहन करो, क्या सहन करो, शक्नोति है वह सोढ़ुम, और कब तक सहन करो, ये सहन कब तक करना चाहिए, प्राक शरीर अविमोक्षणात, अंतिम सांस तक सहन करना पड़ेगा। क्या सहन करना पड़ेगा, काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग, वेग यानी तीव्र एक क्या कहते हैं उसको, इच्छा, आवेग। जैसा सुबह सुबह उठते साथ हमको नैसर्गिक बुलावा आता है, पहले हल्का सा आता है, अरे बोल, थोड़ा सहन करो, थोड़ा जोर से चिल्लाता है, बाद में वो वेग बढ़ता जाता है और बाद में दुनिया का कोई आवाज वो सुनाई नहीं देता उसे। पहले उधर जब तक उस बुलावा को मैं क्या बोलते हैं प्रतिक्रिया नहीं होता, तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरम कवितां वा। पहले उसको कहते हैं वेग, वेग मतलब ऐसा वेग से आता है उस समय और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये ही करूंगा पहले। इस तरह से काम और क्रोध का जब वेग आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पहले मैं करूंगा, कोई कुछ बोले कुछ भी हो, पहले ये वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, ऐसा वेग शरीर से उत्पन्न होने वाले, शरीर यानी तीन गुण, खास करके रजोगुण तमोगुण, काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव। शक्नोति मतलब जो सहन करता है, इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं एतान वेगान्यो विषहेत धीर धीरस तत्र न मुह्यति। तो शायद नींद कहता है, शरीर कहता है और थोड़ा सो जाओ, मन कहता है आज नहीं कल, निश्चित रूप से ऐसा होगा, पर उसको कहना नहीं, उसको सहन करना, कुछ भी कहो मैं जो करना है वो करूंगा, कर्तव्य। और वही गोस्वामी है इंद्रियों को जीता हुआ, जो इंद्रियों को मन को संयम में किया है वही व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ सकता है, नहीं तो सब कुछ मालूम है पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब दूसरा सवाल, ये दृढ़ता आने के लिए करना क्या चाहिए महाराज? कौन दृढ़ता दिखाएगा जिसमें तीव्र इच्छा है? ध्रुव महाराज को तीव्र इच्छा थी, मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए जो मेरे पिता ने उसके दादा के परदादा उनसे भी बड़ा राज्य मैं प्राप्त करके रहूंगा, तीव्र इच्छा, कोई भी बाधा आए मैं उसको बड़ा हटा दूंगा जब तक मुझे वो मिलेगा नहीं। जैसे गंगा जी बहती है तब तक रुकती नहीं जब तक समुद्र तक पहुंचती नहीं, ऐसी तीव्र इच्छा जिसके हृदय में होती है। इस संसार में यशस्वी व्यक्ति, चाहे भौतिक संसार में या भौतिक संसार में या आध्यात्मिक जीवन में भी, जो भी यशस्वी हुए हैं उन्होंने दृढ़ता दिखाया है, इंद्रियों और मन का संयम दिखाया है, दिन रात एक किया है, नींद खोया है, खाना खोया है, तभी तो यशस्वी हुए हैं। दृढ़ता पूर्वक नहीं, जब तक ये होगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं, तब तक पीऊंगा नहीं, ये होना ही चाहिए, वो दृढ़ता आनी चाहिए। गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने वचन लिया था कि मैं सारे आपके पुस्तकें अनुवाद करूंगा उड़ीसा में, उड़िया में। उनका कुछ नियम था, मिनिमम 11 पन्ना अनुवाद किए बिना खाते नहीं थे। इसके द्वारा हम भगवान को दिखा रहे हैं हमारी तीव्र इच्छा है, हम चाहते हैं आपकी भक्ति, आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए हमें। वो दृढ़ता तब आएगी जब इच्छा तीव्र होगी। और इच्छा कैसे तीव्र होगी? संगात संजायते काम, जैसा संग वैसा रंग। ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे जिनके अंदर वो तीव्र इच्छा है, जिनके अंदर वो तीव्र दृढ़ता है, ऐसे व्यक्तियों के संग में रहने से हमारी इच्छा बढ़ती है। और इच्छा जब बढ़ती है तो दृढ़ता बढ़ती है, और जब दृढ़ता बढ़ती है तो यशस्वी होते हैं हम लोग, अनुभव कर पाते हैं एक परम दृष्टवा, एक ऊंचे रस का। तो आज का अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर जनवरी 1 तारीख को नया साल है। महाराष्ट्र में मैंने सुना चैत्र में होता है गुड़ी पाड़वा, मार्च में, मार्च के करीब। कर्नाटक में मकर संक्रांति, ये जो 14 जनवरी 15 जनवरी इस बार, और वहां बड़ा महत्वपूर्ण है वो, हमारा नया साल है। वैदिक संस्कृति में नए साल के दिन कड़वा और मीठा दोनों खिलाते हैं, नीम का पत्ता और उसके बाद कुछ गुड़, दोनों का मिश्रण। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपाइनो अनित्या ताम तितिक्षस्व। अरे कड़वा नहीं होता, कड़वा के साथ साथ मीठा भी आएगा, मीठा के साथ साथ कड़वा भी आएगा, दोनों को सहन कर, हैप्पी न्यू ईयर, आगे बढ़। हैप्पी हैप्पी नहीं होने वाला, थप्पड़ भी पड़ने वाला है, दुख भी आने वाले हैं, अपमान होने वाला है, ठंडी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, सहन करते रहो। और असली हैप्पी न्यू ईयर, असली हैप्पीनेस, सच्चा सुख की ओर प्रयास करो। इस भौतिक सुख, ये तो संसार का द्वंद्व नियम है, ये दोनों एक एक क्या बोलते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा नहीं, दोनों आने वाले हैं। तो इस तरह से ऐसे दिन, जिस दिन हमने ये निर्णय लिया कि आज से मैं आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करूंगा, जिस क्षण आपने निर्णय लिया उस समय आपका हैप्पी न्यू ईयर शुरू हुआ, चाहे वो दिसंबर हो, चाहे नवंबर हो, चाहे शनिवार हो, शुक्रवार हो, चाहे 8 बजा हो, दिन को 1 बजा हो और रात को 12 बजा हो, उस दिन हैप्पी न्यू ईयर। और जब तक ये निर्णय पर नहीं आते, कितना भी हैप्पी न्यू ईयर, कितना भी कैलेंडर फाड़ लो, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, वही संसार 84 लाख होने में जो किया वही चलता रहेगा। और ये तो सचमुच में हैप्पी न्यू ईयर किस दिन है? जिस दिन हम भक्तों के संग में आकर भगवान के सामने बैठकर दोनों हाथ उठाकर पूर्ण रूप से शरणागति के भाव से हरि नाम लेते हैं। अभी हम लोग कीर्तन करने वाले हैं, सुंदर नाटक होने वाला उसके बाद। अंत में मैं एक श्लोक कहूंगा जो चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने बताया। बोले मंगलमय कब मंगल होता है? बोले जहां भक्त लोग एकत्रित होकर हरि कीर्तन करते हैं वो जगह, वो समय और वो स्थान सबसे मंगलमय है, उससे मंगलमय कोई स्थान नहीं। पद ताले, मतलब जब भक्त कीर्तन करते हैं तो कहते हैं पद ताले खंडे पृथ्वी मंगल, पद ताले जब कीर्तन करते हुए एक एक पैर रखता है ना भक्त, तो पृथ्वी का सारा अमंगल दूर हो जाता है हरि कीर्तन में, डिस्को में नहीं। पद ताले खंडे पृथ्वी अमंगल दृष्टि मात्र दशदिक है सुनिर्मल, जहां भी वो दृष्टि डालता है कीर्तन करते हुए वो जगह सुनिर्मल, सब निर्मल हो जाता है। बाहुतुली नाचिते स्वर्गे रो विघ्न नाश, बाहुतुली अगर दोनों हाथ को उठाकर हरि कीर्तन होता है तो स्वर्ग में जितना विघ्न है वो भी नाश हो जाता है। हेन यश हेन नृत्य हेन तोरा दास, बोले ऐसा यश है आपके हरिनाम का, ऐसा नृत्य है आपके भक्तों का, और ऐसा महिमा है आपके शुद्ध भक्तों का। तो मंगलमय होना, हैप्पी न्यू ईयर होना है तो ऐसे जगह में आओ जहां भक्त लोग, प्रामाणिक लोग प्रामाणिकता से भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने आत्म शुद्धिकरण के लिए हरि का नाम ले रहे हैं, वहां आ जाओ और उस समय से उनके संग का लाभ लेंगे तो उस दिन से हमारा हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, चाहे कोई दिन भी हो। हैप्पी न्यू ईयर। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री निधाय गौर चंद्र की, निताय गौर प्रेमानंदी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।